हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। हॉस्पिटल में इशिका को होश आ चुका था। उसके पिछले कुछ सालों की यादें पूरी तरह मिट चुकी थीं। इशिका बस राधिका को पहचान रही थी। वो राधिका को अपनी माँ के तौर पर नहीं बल्कि मिस सिंघानिया कहकर बुला रही थी। उसका ये अनजाने जैसा बर्ताव अभिमन्यु, केशव और राधिका तीनों को ही बहुत खल रहा था। उससे ज्यादा बुरा उन्हें इस बात का लग रहा था कि वो नक्श को अपना समझती थी। इस बीच जब नक्श ने टीवी में इशिका के एक्सीडेंट की न्यूज सुनी तो वो तुरंत इंडिया आ गया था। अभिमन्यु ने अपनी तरफ से नक्श को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो जबरदस्ती इशिका के कमरे में चला गया था। ऊपर से इशिका उसे देखकर काफी खुश भी हुई थी। नक्श के पीछे पीछे केशव, अभिमन्यु और राधिका भी कमरे के अंदर गए थे। उन्होंने देखा कि इशिका नक्श को देखकर काफी खुश हो रही थी। वो उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी पर चोट लगे होने की वजह से खड़ी नहीं हो पा रही थी। ऐसे में इशिका लगभग नीचे गिरने ही वाली थी कि नक्श जल्दी से दौड़कर उसके पास गया और उसके गिरने से पहले ही उसे थाम लिया था। नक्श ने इशिका की तरफ घूर कर देखा और कहा, जब डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने के लिए कहा है तो इतनी जल्दी किस बात की हो रही है? तुम्हारा बिहेवियर काफी शांत है, फिर इतनी बेचैनी किस बात की है? मुझे भी नहीं समझ आ रहा, शायद एक्सीडेंट की वजह से ऐसा लग रहा है, इशिका ने जवाब दिया। वो खुद हैरान थी। उसके लिए नक्श उसका अच्छा दोस्त था, वो उसके दिल की फीलिंग्स को भी जानती थी, पर इशिका ने कभी किसी चीज को लेकर बेचैनी नहीं दिखाई थी। इशिका भले ही अपने इस बदले हुए बर्ताव का कारण न समझ पाए, पर अभिमन्यु अच्छे से जानता था। इशिका भूल गई थी कि वो प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंसी में वो बिल्कुल बच्चों की तरह इम्पेशेंट हो जाती थी। अभिमन्यु के चेहरे पर हल्की न दिखने वाली मुस्कुराहट थी। उसने मन ही मन कहा, तुम अपनी यादों को भूल सकती हो, लेकिन कुछ चीजें तुम चाहकर भी नहीं बदल सकती हो इशिका। तुम्हारे बिहेवियर को तुम नहीं, हमारा बेबी कंट्रोल कर रहा है। मैं तुम्हें सब कुछ वापस याद दिलाऊंगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है फिर से तुम्हारा दिल जीतने में। फिर से इस रिश्ते की शुरुआत करूंगा और इस बार एक नई और बेहतर शुरुआत करूंगा। अभिमन्यु ने किसी भी तरीके से हार नहीं मानी थी। वो खुश था कि इशिका ठीक है और उसके लिए यही काफी था। अभिमन्यु अपने ख्यालों में खोया हुआ था। वहीं नक्श से बात करते वक्त इशिका की नज़र अभिमन्यु पर पड़ी। जब उसे होश आया था, अभिमन्यु ही उसके पास था। खुद को अचानक हॉस्पिटल के अंदर अनजान लोगों के बीच पाकर इशिका थोड़ी घबरा गई थी और उसने अभिमन्यु की तरफ गौर से नहीं देखा, लेकिन अब वो अभिमन्यु की तरफ खोई हुई निगाहों से देख रही थी। उसका शांत खूबसूरत चेहरा, गहरी काली आंखें उसे उम्मीद भरी निगाहों से देख रही थीं। अभिमन्यु को देखकर इशिका ने अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कीं तो उसकी आंखों में अभिमन्यु का धुंधला चेहरा नजर आया, जिसके साथ वो प्यार से हंसते हुए बातें कर रही थी। इशिका ने जल्दी से अपनी आंखें खोलीं। इशिका अभिमन्यु से उसके बारे में पूछना चाहती थी कि तभी नक्श बोला, क्या तुम्हें याद है आखिरी बार क्या हुआ था? ये एक्सीडेंट कैसे हुआ और तुम यहाँ मुंबई में कैसे पहुँच गई? क्या हम मुंबई में हैं? मुझे लगा था हम गोवा के हॉस्पिटल में हैं, इशिका हैरानी जताते हुए बोली। वो अपना सिर पकड़कर याद करने की कोशिश करने लगी। इशिका ने मन ही मन कहा, जहाँ तक मुझे याद है, मैं रात को दिशांक के साथ देर रात तक काम कर रही थी। घर आने में काफ़ी देर हो गई थी और मेरी स्कूटी भी खराब हो गई थी। ऊपर से कोई लिफ्ट भी नहीं मिली थी। ज़रूर इसी बीच एक्सीडेंट हुआ होगा, पर मैं दिशांत और अपनी पहचान के बारे में किसी को बता नहीं सकती हूँ। मैं तो गोवा में थी, फिर एक्सीडेंट होने के बाद मैं मुंबई कैसे आ सकती हूँ? ऊपर से होश में आते ही मैंने जिसको देखा था वो मुझे जाना पहचाना सा क्यों लग रहा है? ज्यादा सोचने की वजह से इशिका के दिमाग में दर्द होने लगा था। उसने अपना सिर पकड़ लिया था और उसके चेहरे के भाव बिगड़े हुए थे। साफ पता चल रहा था कि वो जितना सोचने की कोशिश कर रही थी उसे उतना ही दर्द महसूस हो रहा था। जहाँ नक्श इशिका के जवाब का इंतजार कर रहा था तो वहीं अभिमन्यु जल्दी से आगे आया और इशिका को शांत करते हुए कहा, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है मिस सिंघानिया, मैं आपको मुंबई लेकर आया था। तो फिर क्या आपने मेरा एक्सीडेंट किया था? इशिका ने अभिमन्यु को घूरते हुए पूछा। बिल्कुल नहीं, अभिमन्यु के कुछ भी जवाब देने से पहले राधिका बीच में बोल पड़ी थी। एक तो इशिका को ऐसे ही अभिमन्यु याद नहीं था, ऊपर से राधिका नहीं चाहती थी कि वो अभिमन्यु को गलत समझे। फिलहाल भले ही इशिका को राधिका और अपना रिश्ता याद नहीं था, पर वो राधिका की हमेशा से बहुत इज्जत करती थी। राधिका इशिका के पास आई और उसे समझाते हुए बोली, ये हमारे बिजनेस पार्टनर हैं इशिका, हम किसी मीटिंग से लौट रहे थे और हमने तुम्हें रोड पर बेहोश देखा। आसपास कोई नहीं था तो तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल ले आए, एक्चुअली हम मुंबई ही आ रहे थे। राधिका की बातों पर इशिका आंखें बंद करके विश्वास करती थी। उसने ज्यादा कुछ नहीं पूछा और तुरंत हाँ में सिर हिला दिया था। इशिका को अपनी यादों में राधिका जैसी याद थी, उनमें वो काफी बीमार और कमजोर थी, पर अब देखने में राधिका काफी स्वस्थ और खुश नजर आ रही थी। उसकी आंखों में वो मायूसी नहीं थी। आप बिल्कुल ठीक है मिसेस सिंघानिया, ये देखकर अच्छा लग रहा है, इशिका ने हल्का मुस्कुराकर कहा। मैं ठीक हूँ और तुम भी जल्दी से ठीक हो जाओ, और प्लीज मुझे मिसेस सिंघानिया बुलाना बंद करो, राधिका ने उसे प्यार से डांटते हुए कहा। नहीं, यही ठीक है, वरना मिस्टर सिंघानिया और आयशा को अच्छा नहीं लगेगा। मैंने आपसे कहा था ना कि आप यहाँ मेरे लिए परेशान हो रहे हैं, ये पता लगने पर वे उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करेंगे। ऊपर से आप मालविका को जानते हैं, उसे एक और बहाना मिल जाएगा मुझे परेशान करने का, इशिका ने हल्के मायूस स्वर में कहा। इशिका अपनी खुशहाल जिंदगी के बारे में भूल गई थी तो उसके चेहरे पर वही मायूसी और आंखों में उदासी थी जो पहले हुआ करती थी। वो सक्सेसफुल थी, जो चाहती थी उसने हासिल किया था, और उसे नाम और फेम की कभी चाहत नहीं थी, पर फिर भी उसके चेहरे पर वो खुशी कभी दिखाई ही नहीं देती थी। इशिका को इस तरह दुखी देखकर केशव ने गुस्से में अपनी मुट्ठियां कस ली थीं। उसे फिर से याद आ गया था कि किस तरह मालविका और आदर्श ने मिलकर इशिका की जिंदगी जहन्नुम से भी बदतर बना दी थी। वही आयशा का जिक्र आने पर नक्श का भी मूड बिगड़ गया था। वो नहीं चाहता था कि उसका और जिक्र हो। वो इशिका से बोला, तुम्हें होश जरूर आ गया है, लेकिन डॉक्टर ने यही कहा है कि तुम्हें ज्यादा से ज्यादा आराम करना चाहिए। कौन क्या सोचता है, क्या करता है, इस बारे में सोचकर खुद को स्ट्रेस मत दो। इशिका ने हाँ में सिर हिला दिया। जिस तरह आयशा का जिक्र आने पर नक्श के भाव बिगड़े थे, उसे इशिका को भी थोड़ी हैरानी हुई। वो मन ही मन बोली, अजीब बात है, आयशा का नाम लेने पर नक्श इतना चिढ़ क्यों रहा है, जबकि आयशा तो कब से इसे इम्प्रेस करने की कोशिश में लगी हुई है। आजकल तो इन दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई है। नक्श, वो आयशा, इशिका ने आयशा के बारे में पूछना चाहा, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही नक्श ने उसे टोकते हुए सख्त आवाज में कहा, लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली हो, डॉक्टर को कहकर तुम्हें स्लीपिंग पिल्स देनी ही होंगी, तभी तुम बार बार सवाल पूछना बंद करोगी। इशिका, सच में एक्सीडेंट के बाद तुम्हारा बिहेवियर अजीब हो गया है, तुम्हें किसी के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ता था, और अब तुम हर छोटी चीज को लेकर सवाल पूछ रही हो। नक्श नहीं जानता था इशिका फिर से प्रेग्नेंट है। अभिमन्यु ने बातचीत का रुख बदलने के लिए तेज आवाज में कहा, नक्श, तुम्हारे सवालों से मिस सिंघानिया परेशान हो रही हैं, इन्हें सच में रेस्ट की जरूरत है, तुम चाहो तो यहाँ से जा सकते हो, इनका ख्याल रखने के लिए हम यहाँ पर हैं, तुम्हें बेवजह परेशान होने की जरूरत नहीं है।
इशिका मेरी फ्रेंड है चाचू, और इसके लिए मैं परेशान नहीं हो रहा हूँ। आप बहुत बिजी रहते हैं, पूरे राजवंश एम्पायर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। मैं तो वैसे भी अभी स्टूडेंट हूँ, ज्यादा से ज्यादा एक दो प्रोजेक्ट इधर उधर होंगे, वो मैं यहाँ पर बैठकर भी हैंडल कर सकता हूँ, आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नक्श ने जवाब दिया। न जाने क्यों उसके इरादे अभिमन्यु को सही नहीं लग रहे थे। वहीं इशिका उनके बीच चल रही इस कोल्ड वॉर को देखकर हैरान थी। उनकी बातों से साफ जाहिर था कि वे एक दूसरे को जानते हैं। नक्श, क्या तुम इन्हें जानते हो, इशिका ने तुरंत पूछा। हाँ, ये मेरे चाचू हैं, राजवंश एम्पायर के सीईओ, नक्श ने जवाब दिया। तब तो सच में उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं होगा। थैंक यू सो मच मिस्टर राजवंश, जो आपने मेरी हेल्प की और मुझे हॉस्पिटल पहुंचाया। बट आई थिंक नक्श बिल्कुल सही कह रहा है, आपका यहाँ कोई काम नहीं है, तो आपको अपना टाइम खराब नहीं करना चाहिए, इशिका ने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा। अभिमन्यु इशिका से किसी तरह की बहस करके या वहां रुकने की जिद करके इशिका को परेशान नहीं करना चाहता था। उसने हाँ में सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल मिस सिंघानिया, मैं कुछ दिनों के लिए मुंबई में ही हूँ और कोशिश करूँगा कि आपसे मिलने आता रहूँ। गेट वेल सून। अभिमन्यु तुरंत जाने के लिए दूसरी तरफ पलटा। उसे जाते देखकर इशिका का दिल अजीब तरीके से धड़कने लगा, जिससे वो खुद भी हैरान थी। न जाने क्यों अभिमन्यु का वहां से जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था। इशिका को ज्यादा देर तक सबसे मिलने की इजाज़त नहीं थी। डॉक्टर ने उसे कुछ दवाइयाँ दी और सुला दिया था। जैसे ही नक्श इशिका के सोने पर उसके रूम से बाहर निकला, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो अगले ही पल कड़वाहट भरे भावों में बदल चुकी थी। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मुझे अच्छे से दिख रहा था, अभिमन्यु ने सख्त आवाज में कहा। नक्श के चेहरे पर तंज भरी मुस्कुराहट थी और वो अभिमन्यु की तरफ पलटा। पूरे 1.5 साल बाद अभिमन्यु और नक्श इस तरह एक दूसरे के आमने सामने आए थे। पहले भी उन दोनों के झगड़ों की वजह इशिका ही थी, तो आज भी इशिका की वजह से ही वे दोनों आमने सामने आए थे। बस फर्क इतना था, तब अभिमन्यु और इशिका साथ थे तो आज इशिका नक्श को अपना समझती थी। दूसरी तरफ अभिमान अपने कमरे के अंदर खड़े होकर विचार कर रहा था। इस वक्त उसके दिमाग में यही चल रहा था कि वो कैसे भी करके उस लड़की को ढूंढ ले जिससे स्काई शादी करना चाहता है। अभिमान अपने ख्यालों में खोया हुआ था, उसे अपने दिल ही दिल में काफी अकेलापन महसूस हो रहा था। तभी उसके पास आशिका का कॉल आया। अभिमान का मूड ऑफ था, फिर भी आशिका का कॉल देखकर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट आ गई। अगर उसकी जगह कोई और कॉल करता तो शायद अभिमान उसे रिसीव भी नहीं करता। अभिमान के कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से आशिका की नाराज़गी भरी आवाज़ आई। आपने प्रॉमिस किया था मिस्टर राजवंश कि आप इस प्रोजेक्ट में हर तरीके से मेरी हेल्प करेंगे। आज मुझे ज्वाइन किए हुए 1 वीक हो गया है, लेकिन मुझे पूरा डेटा तक नहीं मिला। मुझे मत कहिएगा कि मैंने आपका काम करने में देर लगा दी। मैं बस आज रात आने ही वाला था, लेकिन फैमिली के कुछ कामों में उलझ गया था। कुछ देर में पहुँचता हूँ, अभिमान ने बिना किसी शिकायत के बहुत प्यार से जवाब दिया। आपका एहसान होगा मिस्टर राजवंश, आशिका ने तंज भरे लहजे में कहा, जिसे सुनकर अभिमान के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई थी। आशिका का गुस्सा, उसकी सार्कास्टिक तरीके से बात करना या शिकायतें करना अभिमान को कुछ भी बुरा नहीं लगता था। आशिका उसका काम करके उसके मकसद में उसकी इतनी बड़ी हेल्प कर रही थी, तो ऐसे में अभिमान यही चाहता था कि वो भी उसके लिए कुछ करे। तो ठीक है मिस ऐश, मैं आप पर एहसान करने के लिए आ रहा हूँ, अभिमान ने हल्का हंसकर कहा और कॉल कट कर दिया था। वो खुद से बड़बड़ाकर बोला, न जाने क्यों तुम्हारे पास आते ही मेरा बुरे से बुरा मूड भी सही हो जाता है। अगर तुम्हारी आंखों का कलर ग्रेश ग्रीन होता, शायद एक पल के लिए मैं मान लेता कि दुनिया में चमत्कार होते हैं और तुम जिंदा हो। इतनी खुशी मुझे उसके पास जाने में ही महसूस होती थी, और इतने सालों में पहली बार वही सुकून महसूस हो रहा है। तुम मेरी हर तरह से हेल्प कर रही हो ऐश, उम्मीद है कि एक दिन तुम भी अपनी सारी प्रॉब्लम्स मेरे सामने खुलकर रखोगी और मैं भी इसी तरह तुम्हारी मदद करूंगा। अभिमान ने अपनी अलमारी में से कुछ हार्ड ड्राइव्स निकाले और जाने के लिए आया था। सिंघानिया फैमिली उस वक्त जाने वाली थी और गार्डन एरिया में थी। जब आशी ने अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट देखी तो वो अजीब नज़रों से उसे देखने लगी। उसने कभी अभिमान को स्माइल करते हुए नहीं देखा था। ऊपर से थोड़ी देर पहले जिस तरह से उसे ब्लैकमेल किया गया था, आशी को यही लगा था कि अभिमान का मूड बुरी तरह उखड़ा हुआ होगा, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। उसका कारण उसे समझ नहीं आया। आशी अभिमान से बात करने जाने वाली थी कि फिर से उसके पास तृप्ति का मैसेज आ गया था। जब उसका इंतजार कर रही थी तो तृप्ति ने भी आशी का बहुत बड़ा काम किया था, तो वो उससे मिलना टाल भी नहीं सकती थी। आखिर उसी की वजह से आज आकाश उनका साथ दे रहा था। जहां अभिमान ऐश के पास जा रहा था, तो वहीं आशी मानसी के साथ रुकने का बहाना बनाकर तृप्ति से मिलने जा रही थी। धद धद।